पिछले अध्याय में आपने देखा कि देवांश को दिशा की चोट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि वो गुस्से में बदला लेने की सोच रहा था। दिशा अनाथ आश्रम पहुंचती है, जहां रूही उसका इंतजार कर रही थी। अगले दिन दिशा और रूही कॉलेज और ऑफिस के लिए निकल जाती हैं। सिंघानिया विला में रुद्र सिंघानिया की सगाई की तैयारियां चल रही हैं। परी रूही को अपनी मदद के लिए बुलाती है, लेकिन रूही तबीयत ठीक ना होने का बहाना बनाकर मना कर देती है। परी रूही को लेने कॉलेज आती है और दोनों पार्लर चली जाती हैं। सिंघानिया विला में रुद्र और देवांश स्टडी रूम में बैठे हैं। अमन रुद्र को सगाई की अंगूठी देता है। दिशा ऑफिस पहुंचती है और उसे याद आता है कि आज रुद्र की सगाई है। देवांश का असिस्टेंट मयंक दिशा को लाल वाली फाइल लेकर सिंघानिया विला आने के लिए कहता है। दिशा अनिच्छा से विला के लिए निकल जाती है। रणवीर और प्रीता के कमरे में रणवीर प्रीता को साड़ी पहना रहा है और अपनी कड़क आवाज में बोलता है। नीचे हॉल में दिशा को एक सर्वेंट धक्का देता है और उसकी ड्रेस गंदी हो जाती है। सुमन दिशा को नई ड्रेस भेजती है और रुकने के लिए कहती है। अब आगे चैप्टर 40। अब आगे सुमन इतना बोल उस सर्वेंट को दिशा को गेस्ट रूम दिखाकर चली जाती है। वहीं दिशा भी अब कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि वे इस तरह गंदे कपड़ों में कहीं नहीं जा सकती थी, इसलिए उसे ना चाहते हुए भी कपड़े बदलने के लिए उस लेडी सर्वेंट के साथ जाना पड़ता है। वहीं वे लेडी सर्वेंट दिशा को गेस्ट रूम दिखा कपड़े लाने को बोल वहां से चली जाती है और कुछ देर में सुमन जी से कपड़े ले दिशा को दे देती है। उसके बाद वहां से निकल किसी को एक मैसेज टाइप करते हुए कहती है, सर काम हो गया। इतना मैसेज टाइप कर वे सेंड कर देती हैं। वहीं दूसरी तरफ देवांश, जो रुद्र के साथ स्टडी रूम में काम कर रहा था, जब अपने मोबाइल में उस मैसेज को देखता है तो उसके फेस पर एक डेविल स्माइल आ जाती है और वे रुद्र की तरफ देखते हुए बोला, भाई मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। देवांश की बात सुनकर रुद्र सर हाँ में हिला देता है, जिसे देख देवांश वहां से अपने रूम में चला जाता है। वहीं देवांश के जाने के बाद रुद्र किसी को कॉल करते हुए कहता है, काम हुआ कि नहीं। रुद्र की बात सुनकर उधर से एक आदमी बोला, जी बॉस, आपने जैसा कहा था सब कुछ हो गया। मैंने पार्लर में आपकी पसंद की लहंगा और सारी ज्वेलरी भिजवा दी है और वहां की बेस्ट ब्यूटिशियन को भी सब कुछ समझा दिया है। उस आदमी की बात सुनकर रुद्र कॉल कट कर देता है और अपने चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल लिए खुद भी अपने रूम में तैयार होने चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ मुंबई के सबसे बड़े पार्लर में रूही परी के लिए सब कुछ सिलेक्ट कर उसे अच्छी तरह से तैयार करवा देती है और परी जब तैयार होकर बाहर आती है तो रूही उसे देखते हुए उसकी नज़र उतारते हुए कहती है, यार परी, आज तो तू सच में बिल्कुल परी ही लग रही है, तुझे आज कहीं मेरी ही नज़र न लग जाए, पता नहीं आज तो कितने लड़कों के दिल चुराने वाली है। इतना बोल मुस्कुराने लगती है। वहीं परी रूही की बात सुनकर बोली, बस बस बंद कर मुझे मक्खन लगाना, अब तेरी बारी, चल। इतना बोल परी रूही का हाथ पकड़ अंदर ले जाकर उसे छोड़ते हुए कहती है, अब मैं बाहर वेट कर रही हूँ, तू जल्दी से तैयार होकर आ जा। इतना बोल परी बिना रूही को कुछ भी बोलने का मौका दिए बाहर चली जाती है। वहीं पार्लर की लड़कियां रूही को एक खूबसूरत सा लहंगा देते हुए कहती हैं, मैम प्लीज आप इसे पहनकर जल्दी से आ जाइए, हमारी मैम आपका मेकअप करने के लिए कब से वेट कर रही हैं। रूही उन लड़कियों की बात सुनकर उनके हाथ में पकड़े खूबसूरत से लहंगे को देखती है, फिर उनसे वे लहंगा ले चेंज करके कुछ देर में वापस आती है। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र दुनिया की फेमस ब्यूटिशियन मिसेस बबीता पर पड़ती है, उसका मुंह खुला सा खुला रह जाता है। रूही हमेशा ये सोचती थी कि खास वे भी इतनी बड़ी ब्यूटिशियन से कभी मेकअप करवा पाती, लेकिन आज उन्हें अपने सामने देख रूही को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके सामने सच में मिसेस बबीता खड़ी हुई है। वहीं बबीता जब रूही को इस तरह एक ही जगह पर खड़ा हुआ देखती है तो वे रूही से कहती है, मैम प्लीज आप बैठ जाइए जिसके मैं आपका मेकअप कर सकूँ। मिसेस बबीता की बात सुनकर रूही खुश होते हुए मिसेस बबीता के पास आते हुए बोली, सच में आप खुद मेरा मेकअप करेंगी, मुझे तो अब भी विश्वास नहीं हो रहा कि आप मेरे सामने हैं और आप खुद मेरा मेकअप करने आई हैं। थैंक यू वेरी मच मैम, आपको नहीं पता कि मैं आपकी कितनी बड़ी फैन हूँ। इतना बोल वे जल्दी से खुशी खुशी मेकअप करवाने बैठ जाती है। वहीं मिसेस बबीता रूही की बात सुनकर अपने मन में बोली, आती कैसे नहीं, मुझे इतने बड़े आदमी से पंगा थोड़ी लेना है। इतना बोल अपने चेहरे पर डर के भाव हटा तुरंत रूही का मेकअप करना स्टार्ट कर देती है। वहीं दूसरी तरफ सिंघानिया विला के गेस्ट रूम में दिशा अपनी ड्रेस चेंज कर सुमन जी के द्वारा भिजवाए हुए गहने को पहनती है, फिर अपने बालों को खुला ही खोल छोटी सी पिंक कलर की बिंदी और लिपस्टिक लगा तुरंत उस फाइल को ले देवांश की रूम की तरफ चली जाती है, क्योंकि फाइल देने के बाद वे कुछ देर यहाँ रुक जाने का सोच रही थी। कुछ देर में वे देवांश के रूम में पहुंचती है और दरवाजे को नॉक करते हुए कहती है, मे आई कमिंग सर। वहीं देवांश, जो अपनी शेरवानी पहनकर तैयार हो गया था, दिशा की आवाज़ सुनकर वे मुस्कुराते हुए बोला, कमिंग मिस दिशा। दिशा की आवाज़ सुनकर दिशा अंदर जाती है और देवांश की तरफ देखते हुए कहती है, सर आपने ये फाइल मंगवाई थी। दिशा की आवाज़ सुनकर देवांश अपनी अलमारी से कुछ निकालते हुए बिना दिशा की तरफ देखे ही बोला, मिस दिशा आप फाइल को वहीं टेबल पर रख दीजिए। देवांश की बात सुनकर दिशा फाइल को टेबल पर रख देती है। वहीं देवांश अपना काम करने के बाद दिशा की तरफ देख जैसे ही कुछ बोलने वाला होता है, वैसे ही उसकी आवाज़ उसके मुँह में ही रह जाती है और वे दिशा के खूबसूरत चेहरे को बस देखता ही रह जाता है। दिशा ने ज्यादा मेकअप नहीं किया था, उसके बावजूद वे काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। देवांश उसके चेहरे को देखने के बाद उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखता है। दिशा को आज इस तरह ट्रेडिशनल लुक में पूरी तरह से तैयार होते हुए देवांश ने पहली बार देखा था, वरना वे ऑफिस में बेहद सिंपल ही रहती थी। वहीं दिशा जब देवांश की नजरें खुद पर पाती हैं तो थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो जाती है, जिसके दिशा देवांश को देखते हुए बोली, सर अब मैं चलती हूँ। इतना बोल वे जाने को होती है, तभी देवांश अपने होश में आता है और अपने शर्ट के बटन को तोड़ते हुए दिशा को देख रोकते हुए बोला, मिस दिशा रुकिए। देवांश के बोलने पर दिशा रुक जाती है और देवांश की तरफ मुड़ते हुए बोली, जी सर क्या हुआ? दिशा की बात सुनकर देवांश बोला, मिस दिशा मुझे आपकी एक छोटी सी हेल्प चाहिए, आई होप कि आप मुझे मना नहीं करेंगी।
देवांश की बात सुनकर दिशा देवांश को सवालिया नजरों से देखने लगती है, जैसे कहना चाहती हो कि वे उसकी क्या ही हेल्प कर सकती है। वहीं देवांश दिशा की बात को समझते हुए बोला, मिस दिशा एक्चुअली मेरे शर्ट के बटन टूट गए हैं, तो क्या आप उसे लगा देंगी?